لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أذان محترم، ہماری گفتگو جو شروع ہوئی تھی وہ مرجعیت اور رہبریت کے عنوان سے شروع ہوئی تھی، اور کئی نشستیں ہم اس حوالے سے کر چکے ہیں. ہم نے اپنی بحث کا آغاز جو ہے وہ تقلید اور اجتہاد کے تصور سے کیا، اور ہم نے اس میں یہ بتایا کہ اجتہاد اور تقلید کا جو نظام ہے موجودہ دور میں، اس کا آغاز حضور ائمہ طاہرین کے ادوار سے ہو چکا تھا. البتہ اس زمانے میں یہ پورا ایک ادارے کے طور پر وہ تعریف نہیں تھا، یعنی انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا. لوگ جاتے تھے اور کسی بھی فقیہ سے جا کے دین کا مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، جس کو وہ اپنے حساب سے عالم سمجھتے تھے، زیادہ قابل سمجھتے تھے، موسٹ لرنڈ سمجھتے تھے، اس سے پوچھ لیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ دور جو ہے وہ آج کی طرح کمیونیکیشن کے ایڈوانسمنٹ کا دور بھی نہیں تھا کہ ایک شہر کا انسان دوسرے شہر میں جا کر پوچھے، لہذا لوگ اپنے ہی شہر سے، اپنے علاقے سے قریب ترین جو دستیاب ہو جاتے تھے علماء، ان سے جا کے دین کا احکام لے لیا کرتے تھے. یہ طریقہ کار شیعوں میں بھی رائج تھا، سنیوں میں بھی رائج تھا. ان کے یہاں بھی بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ ہیں یا امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں. تو یہ جو لوگ تھے یہ بھی، مثلا امام ابو حنیفہ کوفے میں تھے اور اسی زمانے میں امام مالک جو ہیں وہ مدینے میں تھے، تو کوفے والے امام ابو حنیفہ کے پاس آ جاتے تھے. بعض اوقات ان کے شاگردوں سے لوگ رجوع کر لیا کرتے تھے. سلمان سوری جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے، اور محمد حسن الشیبانی جو ہیں وہ سفیان سوری، محمد حسن شبانی جو ہے ان کے شاگرد تھے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ ہوں اور سب حنفی ہوں اور وہ سب لوگ جو ہیں امام ابو حنیفہ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوں. امام ابو حنیفہ کے دور میں کوئی حنفی نہیں تھا، امام شافعی جو زمانے میں موجود تھے کوئی شافعی نہیں تھا. تو لوگ جاتے تھے ان کے شاگردوں سے ہی بعض اوقات رجوع کر لیا کرتے تھے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے عالم کی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں جو ہیں وہ دراصل عقلی دلیلیں ہیں. یعنی انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ قابل جو ہے اس سے رجوع کرے. زمانۂ غیبت میں ہوا یہ کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا، چونکہ زمانۂ غیبت میں امام سے براہ راست رابطہ بھی ختم ہو گیا. تو امام کے جو بنائے ہوئے ان کے اپنے زمانے میں وکلا تھے جو مختلف شہروں میں، وکلا کے اوپر ہماری کافی بات ہوئی ہے، تو جو وکلا تھے مختلف شہروں میں تو ان سے لوگ رجوع کیا کرتے تھے. اب زمانۂ غیبت میں جو ہے وہ وکلا کا یہ سلسلہ اس طرح قائم نہیں رہا، لیکن وہ وکلا، ان کا خاندان اپنے اپنے علاقوں میں بحثیت ایک عالم، بحثیت ایک فقیہ کے معروف تھا. مثال کے طور پر اگر ابن بابویہ قمی جو تھے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندہ تھے قم میں. اب ان کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کی اولاد میں شیخ صدوق خود ایک فقیہ تھے اپنے زمانے کے، اور ان کے بھائی بھی ایک فقیہ تھے. تو ایک پورا خاندان، ابن بابوی کا خاندان جو ہے یہ پورا ایک فقہا کا خاندان ہے. تو اس طرح مختلف خطوں کے اندر جو لوگ ائمہ طاہرین کے زمانے میں امام کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کے زمانے غیبت میں بھی جو ان کی اولادیں تھیں یا اس خاندان کے دیگر علماء یا ان کے شاگرد، بعض علاقوں میں انہوں نے بھی ادارے قائم کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے شاگرد تیار کیے ہوئے تھے، تو وہ جو شاگرد تھے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے. ये सिस्टम पूरा कहलाता है मर्जियत का निज़ाम। अच्छा, लेकिन हमारी जो असल बहस इसके आगे जाएगी और जो पिछले पिछली नशिस्त में पहुंच चुकी है वह है विलायत फकीह, कि ये जो मर्जियत का निज़ाम है इसमें जो एक मर्ज तकलीद है, जो एक मुज्तहिद होता है जिसको हम एक फकीह आदिल की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं हम उसके लिए, क्योंकि तो वो मासूम नहीं होता, लिहाजा उसको हम आदिल कहते हैं, मासूम नहीं कहते। मासूम वो होता है जिसको खुदा ने मासूम बनाया, लिहाजा एक फकीह को जो किसी हराम काम में मुबतला नहीं होता, किसी वाजिब काम को तर्क नहीं करता, उसको भी हम मासूम नहीं कहते, उसको हम कहते हैं आदिल। तो फकीह आदिल के पास जो मर्जियत है और उसके पास कजावत भी है, एक तफसील से हमारी कजावत पर भी बात हो चुकी है, तो क्या इसके पास कोई रहबरियत यानी लीडरशिप का भी कोई की विलायत है, और क्या हुकूमत यानी उसके पास इतने अख्तियार भी है कि वो जमाने गैबत इमाम में एक हुकूमत भी कायम कर सके, जैसा कि ईरान में इनकलाब आया, इमाम खमेनी ने एक हुकूमत कायम की और उसको इस्लामी हुकूमत कहा गया, इस्लामी जमहूरिया ईरान। तो क्या एक फकीह आदिल के पास इतना अख्तियार है कि वो एक हुकूमत कायम करे? तो ये बहस जो है वो ईरान के इनकलाब के बाद जरा आवामी सतह पर आ गई, वरना इससे पहले ये बहसें हमारी किताबों में थी, इससे पहले ये बहसें हौजाए इल्मिया के अंदर पहले से मौजूद थी। इनकलाब तो 1979 में आया, लेकिन इमाम खमेनी ने इन बहसों को अपनी जो उनकी फिक्र की किताब है किताबुल बै, उसके अंदर ये जो विलायत फकीह की दलीलें हैं, हदीसें हैं और उनके रिवायतों की जो तहलील है, ये सारी बहसें उन्होंने अपनी फिक्र की किताब के अंदर किताबुल बै के अंदर की। और फिर जब इमाम खुमैनी जिलावतन होके नजफ़ अशरफ पहुँचे तो नजफ़ में आपने कुछ दुरूस दिए, लेक्चर्स दिए जो किताबी शक्ल में आए, जिसको हुकूमत इस्लामी के नाम से उर्दू में भी छपी है, तो उन लेक्चर्स के अंदर फिर आपने उन्हीं चीज़ों को दोहराया। ये इनकलाब से भी 20 साल पुरानी बातें हैं, 20 साल 30 साल पुरानी बातें हैं। तो पहले से एक थ्योरी आपने पेश कर दी थी, उस वक्त तो बज़ाहिर कोई आसार भी नहीं थे इनकलाब के, ठीक है, उस वक्त तो तवक्को भी नहीं थी कि कोई इस्लामी हुकूमत इस तरह कायम हो जाएगी, या इमाम खुमैनी बच भी पाएंगे, उनके तो फर्जंद को भी शहीद कर दिया गया मुस्तफ़ा खुमैनी को, जबकि आप नजफ़ में थे, तो इमाम खुमैनी को तो ये भी नहीं अंदाज़ा होगा कि वो खुद भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, शाह की मुखालफत और जो कुछ उनके साथ हो रहा था। तो लेकिन जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि इमाम खुमैनी ने इन चीज़ों को लिख दिया, इन इन चीज़ों को लॉन्च कर दिया, इस इशू को लॉन्च कर दिया उसी वक्त। लेकिन जाहिर है कि मखसूस लोग ही उन चीज़ों से वाकिफ़ थे, अवामुन्नास में जाहिर है कि ये सब बातें थी नहीं। खासतौर पर अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ तो इनकलाब के बाद भी बहुत से लोग कहते थे, मुझे याद है कि एक ही अपना शिया बादशाह था ईरान में, और वो भी इमाम रजा के हरम में भी जाया करता था, ये खुमैनी साहब ने आके उसको भी हटा दिया, एक बादशाह जो शिया था वो भी ख़त्म हो गया। तो उनको अंदाजा ही नहीं था कि वो शिया बादशाह जो था वो किस टाइप का था। तो यहाँ तो लोगों के अंदर इतना शऊर था ही नहीं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता, मुझे याद है कि हम जब स्कूल में थे तब ये इनकलाब आया था क्लास 7 या 8 में, तो डॉक्टर कल्बे सारिफ साहब जो थे वो आया करते थे यहाँ हिंदुस्तान से मजलिस में पढ़ने के लिए, और उन्होंने यानी मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में पहली मरतबा इनकलाब के बारे में तफसील के साथ अगर कोई बातें सुनी थी, तो डॉक्टर कल्बे सारिफ साहब मरहूम खुदा उनको गरीब रहमत करे, तो उनकी ज़ुबान से हमने ये बातें सुनी थी, और वो तकरीर की एक पूरी सीरीज थी उनकी जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में करते थे, उसका आगाज उन्होंने खुरासान से किया था, फिर रिजविया गए थे मुख्तलिफ जगहों पर, और जहाँ जहाँ वो बयान करते थे हर जगह मिल जाते थे, और बड़े दिक्कत अंगेज अंदाज से कि जो शाह के मजालिम थे किस तरह हुए, और तो काफ़ी बेहतर अंदाज में उन्होंने इनकलाब इस्लामी को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद फिर ईरान से बाद उलमा आए, उन्होंने भी ये बातें की। तो अलग-अलग हमारे यहाँ तो ये इशू जब लॉन्च हुआ जब इनकलाब आ गया, लेकिन इल्मी हलके में किताबों के अंदर फिक्र की किताबों के अंदर हौजाए इल्मिया में ये बहसें कोई आज की नहीं है, ये बहसें बहुत पहले से चली आ रही हैं। क्या इमाम खुमैनी से पहले भी ये बातें लोगों ने की हैं? जी हाँ, इमाम खुमैनी से पहले भी जो, और उससे पहले की किताबों में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी ये बहसें, और ये इस तरह विलायत फकीह भी आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर भी ये बातें जेर बहस आई हैं, कि क्या एक फकीह आदिल हुकूमत भी कायम कर सकता है, क्या उसके पास इतनी अथॉरिटी है। और जाहिर है कि ये बहस ऐसी है जिसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स हैं। आज भी ऐसा ही है, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे कोई दिन से खारिज नहीं हो जाता, ये कोई बुनियादी अकीदे की बात नहीं है, लेकिन ना मुखालफत बराए मुखालफत दुरुस्त है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें इल्मी दलीलों के साथ अगर कोई शख्स इससे एग्री नहीं करता तो जाहिर है वो उसका मामला है, जिस तरह और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कंट्रोवर्शियल बन गए हैं, बहुत से लोग उससे एग्री नहीं करते। अच्छा, एग्री नहीं करने वालों को भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वो हमारा मौजूद नहीं है तफसीर में जाने का, लेकिन जो एग्री नहीं करते हैं उनकी भी कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बिल्कुल फॉर में हैं, कुछ लोग बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, बल्कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे फुकहा मौजूद हैं। अभी देखें ईरान में तो निज़ाम विलायत फकी है, इराक में तो नहीं है, लेकिन एक मर्जे अली कदर आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी जो हैं वो अपना एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं ना, हुकूमत उन्होंने कायम नहीं की है, ये बात ठीक है। अब ज़ाहिर है इराक के जो इस वक्त हालात हैं उनमें ये तो नहीं हो सकता है कि आयतुल्ला सिस्तानी एक हुकूमत का ऐलान कर दे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना निज़ाम चलाने के लिए। तो हुकूमत का ऐलान तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन एक पोलिटिकल रोल वो प्ले कर रहे हैं, वक्ता फ़वक्ता प्ले करते रहती हैं, और बहुत ही क्रूशियस टाइमिंग के अंदर हम देखते हैं कि उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन सामने आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। यानी ईरान इराक इराक को बहुत खतरनाक तसादुम से, खाना जंगी से, कत्ल गारतगरी से, शिया सुन्नी लड़ाई से, या शिया शिया के दरमियान जो रिफ्ट पैदा होता रहा है मुख्तलिफ अवकात में, उससे क्राइसिस से निकालने में आयतुल्ला सिस्तानी का कि जो पॉलिटिकल विजडम है उसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और आप लेटेस्ट देख लें अभी के फलस्तीन के मामले में जो उन्होंने ऐलान किया है, और इसराइल के बारे में जो उनके ख्यालात हैं, जो इसराइली प्रोडक्ट के बारे में जो उनका फतवा है, ये सब क्या है, एक फकीह का एक पॉलिटिकल रोल है। यही वो चीज़ है जो तारीख में हर दौर में रही है। हुकूमत चाहे ना रही हो, हुकूमत तो एक आखिरी चीज़ है ना। हुकूमत के बारे में तो मैं बयान कर चुका हूँ कि अंबिया और आइमा के पास भी नहीं रही, उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि अवाम साथ दे। अवाम साथ देगी तो वह हुकूमत कायम होगी, अगर अवाम साथ नहीं देगी, अवाम अगर साहब विलायत के साथ ना दे तो अली अलैहिस्सलाम जैसे लीडर को भी 25 साल घर में बैठना पड़ता है। तो हुकूमत का क़याम एक और मामला है, अलबत्त हुकूमत का क़याम के साथ और बहुत सारे बहसें शामिल हो जाती हैं, लेकिन जो उससे पहले वाला मरहला है वो है एक पॉलिटिकल रोल, वो है एक लीडरशिप वाला रोल। लीडरशिप वाला जो रोल है एक फकीह आदिल का, वो आप देखें तो हर दौर में वो रहा है। और आज जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इराक के अंदर जहाँ कोई निज़ाम विलायत फकीह कायम नहीं है, जहाँ कोई इस्लामी हुकूमत इस तरह कायम नहीं है, एक जमहूरी हुकूमत है, वो भी बड़ी मुश्किल से इलेक्शंस होती हैं, बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट हलफ उठाती है, बहुत क्राइसिस का दौर है अब तक वहाँ पे। इसके बावजूद भी एक फकीह आदिल जो है अपना एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, और मुख्तलिफ इशूज़ में जो उनके बयान हैं, न वो जलसा करते हैं, न वो टीवी पर आते हैं, न वो तकरीर करते हैं, लेकिन एक उनका एक उनकी एक पर्सनालिटी है और उनका एक फरमान जारी होता है उनके दफ्तर से, और वो इतना इफेक्टिव होता है कि एकदम उसका इम्पैक्ट सामने आता है और बड़े से बड़ा क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो एक देखिए एक फकीह का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, कितना वाइटल रोल होता है सोसाइटी के अंदर। अब कोई कह रहे कि नहीं, इस फकीह को सिर्फ नमाज पढ़ाना चाहिए, इस फकीह को सिर्फ तलाक के सिवे पढ़ाना चाहिए, इसको बस जो है ना वो तालिबे इल्मों को पढ़ाना चाहिए और बस इसी कामों में लगा रहिए, ये कहाँ इन चक्करों में पड़ गए। तो वो समझ नहीं रहा है असल में कि एक फकीर जो है एक माशरे के लिए कितनी बड़ी नेमत होता है। तो यही तो वो चीज़ है कि जिसको कहा जाता है अल मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत जो है वो आलम की मौत भी। एक आलिम वो है कि जिससे पूरे आलम को फ़ायदा पहुंच रहा है, आलम ने दुनिया, एक आलिम वो है जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसकी अगर खुदा ना खास्ता मौत हो जाए तो पूरे आलम को नुकसान है उससे। जो हदीस में आया ना कि सबसे ज़्यादा खुशी शैतान को अगर किसी चीज़ से होती है तो एक फकीर की मौत से होती है, क्योंकि उससे आलम को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो वो फकीर जिससे पूरे आलम को फ़ायदा पहुंच रहा है, वो अगर इस दुनिया से चला जाए तो जाहिर है कि उससे आलम को नुकसान भी पहुंचता है। एक हदीस में कहा गया कि फकीर के मरने से इस्लाम में एक ऐसा रखना पड़ जाता है जिसको कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती, इस्लाम में रखना पड़ जाता है। तो वो पूरे इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो मोहल्ले के मौलाना साहब का इंतकाल हो जाता है, स्वयं के इश्तार में लिखा होता है अलमौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत जो है वो आलम की मौत है। तो बाद लोगों के मरने से किसी को कोई रखना नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि बाद लोगों के मरने से जो खला पैदा होता है, पैदा किया जाता है जमीन पे खड्डा खोद कर, उसको उसी से भर दिया जाता है, यानी उस कब्र में उसी को डाल के पुर कर दिया जाता है। तो बाद लोगों के मरने से कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन अगर किसी के वजूद से पूरे आलम को फायदा पहुंच रहा हो, जैसे हम देख रहे हैं मौजूदा दौर में बड़े बड़े उलमा का एक रोल है और उनके वजूद से पूरे आलम इस्लाम को फायदा पहुंच रहा है, आलम इंसानियत को फायदा पहुंच रहा है। आप देखें अयतुल्लाह सिस्तानी का पॉप से मुलाकात, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि वो पॉप जो घर से निकलते नहीं है कभी, तो वो आकर उस छोटे से कमरे में उनसे मुलाकात करते हैं। हालांकि अयतुल्लाह सिस्तानी का इस वक्त जो मकाम है इराक में, वो चाहते थे बगदाद के किसी बहुत फाइव स्टार होटल में उससे मुलाकात कर लेते, तो मुश्किल काम ही नहीं था। वो तो चाहते थे सदारती महल में जाकर उससे मुलाकात कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बताया कि एक अहले बैत के दर का जो फकीह होता है उनको इन चीज़ों से वास्ता ही होता है। आपको मुझसे मुलाकात करनी है तो शिफ्ट ले आए, आप जो चाय हमारे घर में बनती है आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो और वो चल कर आए, वो क्यों चल कर आए, उनको भी अंदाजा है कि ये शख्स जो है ये नजफ के तंग सी गली के घर छोटे से घर में जो रहता है, ये आप इसके घर को और इसकी गली को ना देखें, इसके इम्पैक्ट को देखें सोसाइटी में कितना है, इस एक शख्स का इम्पैक्ट कितना है सोसाइटी के अंदर। तो वो जो मिलने के लिए आया वो यूं ही नहीं आया, उसको अंदाजा है कि इराक के अंदर क्रिश्चियनिटी को जो थ्रेट थे जो दाइश की तरफ से या दूसरी चीज़ों दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, तो उसमें इनका कितना बड़ा रोल रहा है कि लोगों को बचाने में, महफूज करने में, मुख्तलिफ मजाहब के मुकदस चीज़ों को बचाने में। तो वो समझता है इसकी अहमियत को, ये भी तो चल के आया। तो देखिए विलायत फकीह का मतलब हुकूमत है, ये एक बहस है ऑफकोर्स, उस पर हम जा रहे हैं, लेकिन विलायत फकीह का मतलब एक पॉलिटिकल रोल ऑफ ए फकीह, पॉलिटिकल रोल ऑफ ए जूरिस्ट, इसके ऊपर गौर की। और जाहिर है हुकूमत भी जब कायम होगी ना, वो फकीह पॉलिटिकल रोल प्ले करेगा। अगर इमाम खुमैनी ये पॉलिटिकल रोल प्ले ना करते, इमाम खुमैनी से पहले अयतुल्लाह बरजोरदी अगर ये रोल प्ले ना करते तो इनकलाब तो नहीं आता। एक रोल है एक फकीह का सोसाइटी के अंदर, उस रोल को जब वो प्ले करते हैं तो फिर आगे चलकर हुकूमत कायम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो एक सानवी मामला है। तो इसलिए विलायत फकीह की जो बहस है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। अच्छा, अब इस बहस को मुख्तलिफ डायमेंशन में हम जो है वो बयान कर सकते हैं, और मैं इसको इस तरह बयान करता हूं कि इस बहस को चार मुख्तलिफ डायमेंशन में आप बयान कर सकते हैं। सबसे पहला डायमेंशन ये है इसका कि निजाम इश्तहाद और तकलीद का तसलसल, यानी जो इश्तहाद और तकलीद का एक निज़ाम जिससे हम बात कर चुके हैं तफसील से, इसके तसलसल में अगर आप देखें तो एक नुक्ता जो मैं बयान कर चुका हूँ दोबारा मैं उसको दोहरा देता हूँ कि ज़माने हुजूर इमाम में आपको ये तो मिलेगा कि मुख्तलिफ फुकहा से लोग रुजू करते थे दीनी अहकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन जो इज्तिमाई मामलात थे, जो सियासी मामलात थे इस उम्मत के, वो फकत और फकत इमाम ही रिजॉल्व करते थे। ठीक है, उसमें उसको इमाम ने उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया हुआ। तो अब जब जमाने गैबत कुबरा शुरू हुआ तो ये सवाल आया, क्योंकि इसके बाद गैबत कुबरा का दौर शुरू होना था, उम्मत के जो इज्तिमाई मामलात हैं उनका क्या बनेगा। और यही उस हदीस का मतलब है, वो अमर हवा फर जो किया। तो ये सवाल आया कि अहकाम शरीयत के हुसूल के लिए तो फकीह आदिल से रजू करना एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इस उम्मत की इज्तिमाई मामलात हैं उनका क्या बनेगा। तो उसका वो हल पेश किया गया, फर्जो फीहा रवात हदीस। और ये वजह है कि हम देखते हैं कि जो फुकहा हैं, मुश्ताहिदीन हैं, उन्होंने एक अपना इज्तिमाई रोल प्ले किया। इसकी तरफ मैं इशारा कर चुका हूँ कि शेख मुफीद अलैहि रहमा ने अपने ज़माने में एक रोल प्ले किया, फिर जो है वो शेख तूसी आ गए, फिर सैयद मुर्तज़ा आ गए, पहले सैयद मुर्तज़ा आ गए, फिर शेख तूसी आ गए। तो एक सिलसिला है जो कि फुकहा का है, और उन्होंने एक ज़माने में अपना रोल प्ले किया। और आज भी जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको इराक़ की, और इससे पहले इराक़ के अंदर अगर आप देखें तो शहीद बाकर सदर की मिसाल हमारे सामने है, तो उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो ईरान में तो बहुत सारे लोग इस तरह गुजर चुके हैं। तो एक तरह से मैं मौसम तरक्की की मिसाल भी दे चुका हूँ इससे पहले, कि जब लबनान से जबल आमिल से वो ईरान आए थे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि फुकहा ने अपना रोल प्ले किया ज़माने गैबत में। तो इसको हम निज़ाम इश्तहाद और तकलीद का तसलसल भी कह सकते हैं कि इश्तहाद और तकलीद का ये निज़ाम है। ये तो ज़माने हुजूर इमाम में भी था, उसके बाद भी जारी रसाई रहा, लेकिन उसके अंदर एक इजाफा हो गया और वह है एक फकीह का पॉलिटिकल रोल। दूसरा है हुकूमत की ज़रूरत और शराइत। इस बहस को करने का एक तरीका यही है, मैं अपने पीएचडी के थीसिस में जो है वो इस पैटर्न को इख्तियार किया कि हुकूमत की ज़रूरत और शराइत से बहस करें। और बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबें जो लिखी हैं तो उन्होंने भी इस पैटर्न को इख्तियार किया। इसमें हम करते ये हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हर माशरे में हुकूमत ज़रूरी है, हुकूमत के बगैर कोई माशरा नहीं रह सकता, मुतमद्दन माशरा नहीं रह सकका। हाँ, तहजीब तमद्दन का आगाज़ से पहले कबायली माशरा था, जैसे अरब में भी अगर आप देख लें तो इस्लाम से पहले का जो निज़ाम था मक्का और मदीने का वो कबायली निज़ाम था, और उसमें आपको कोई हुकूमत नज़र नहीं आएगी, ना हुकूमत है, ना अदलिया है, ना पुलिस है, ना फौज है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं है, कोई भी निज़ाम नहीं है, बादशाह भी नहीं है। लेकिन कबायली निज़ाम है, कबायली निज़ाम में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जंग जदल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कबायली निज़ाम के अंदर जारी और सारी हैं। लेकिन हुकूमत एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर माशरे में महसूस की जाती रही है, और जब इस्लाम में इस्लाम जिस माशरे में आया उस माशरे में जब ये सारा निज़ाम नहीं था तो उस वक्त भी दुनिया में इस्टेब्लिश हुकूमतें मौजूद थी, रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, बड़ी बड़ी हुकूमतें मौजूद थी इस रीजन के अंदर जिसको हम हिजाज मुकद्दस कहते हैं, मक्का और मदीना, यहाँ पर आपको कोई पॉलिटिकल सिस्टम नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब इस्लाम आ गया, जब लोग पैगंबर अकरम का साथ देने लगे, जब आपने मदीने में एक माशरा कायम किया तो एकदम एक हुकूमत वजूद में आ गई, एक पॉलिटिकल सिस्टम वजूद में आया, एक सेंट्रलाइज जो कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, क्योंकि ट्राइबल सिस्टम में तो हर आदमी ट्राइबल चीफ जो है वो हाकिम होता है एक तरह से, जो ज़बान से कह रहता है वो कानून हो जाता है। लेकिन मदीने में ऐसा नहीं था, मदीने में बाकायदा पैगंबर अकरम ने एक ऐसे माशरा कायम किया कि जिसमें एक पोलिटिकल कंट्रोल था, और जो मुसलमान नहीं थे जैसे यहूदी तो वो भी उन चीज़ों के पाबंद थे। और फिर पैगंबर अकरम के बाद जो खलीफा का दौर आया उसमें बाकायदा एक हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई। अब अगर हजरत अली पहले आ जाते तो क्या करते वो? वो तो अगर पहले आते तो वक्त बताता कि क्या करते, लेकिन जब वो चौथे नंबर पर आए, जब भी उन्होंने उस सेटअप को ख़त्म तो नहीं किया, उसको एज इट इज चलने दिया, उसमें और बेहतरी की अपनी, जो खराबियां हो गई थी 25 साल में उनको दूर किया। इसका मतलब ये कि हज़रत अली ने उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, तो वो सिस्टम जो है वो इसी तरह चलता रहा। हुकूमत का इनकार किसने किया? खवारिज ने किया, इन्नल हुक्मा इल्ला लिल्लाह, उन्होंने नारा लगाया कि कोई हाकिम नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। तो अमीर उमरी ने जब खवारिज का नारा सुना, इन्नल हुक्मा इल्ला लिल्लाह भी कुरान की आयत है, تو آپ نے فرمایا کلمہ تو حق نہیں اراد بحر باطل کی، یہ کلمہ تو حق ہے جو قرآن میں ہے، لیکن جو ارادہ ان کا ہے، جو نیت ان کی ہے، جو مفہوم یہ نکال رہے ہیں وہ باطل ہے. اور فرمایا لابد من امیر برن اور فاجرین، کہ امیر تو بہت ضروری ہے، لیڈر تو بہت ضروری ہے، حاکم تو بہت ضروری ہے، نیک ہو یا برا. یعنی اگر ایک برا حاکم بھی ہو پھر بھی معاشرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا کہ ایک ہیڈ لیس سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے، جس میں کوئی حاکم ہی نہ ہو، جس میں کوئی سسٹم ہی نہ ہو، جس میں کوئی نظام ہی نہ ہو. تو اچھا بھی حاکم ہو تو ظاہر ہے معاشرے کو زیادہ فائدہ ہے، لیکن اگر اچھا نہ بھی ہو، برا حاکم بھی ہو، تو کچھ نہ کچھ فائدہ یہ ہے کہ قانون کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، سڑکیں محفوظ ہوتی ہیں. پورے خطبہ ہے میرے مومن کا. تو حکومت کا انکار کس نے کیا؟ حکومت کا انکار جو ہے وہ خوارج نے کیا. پھر مولا علی کی شہادت ہو گئی تو امام حسن کی حکومت آ گئی، 6 مہینے تک وہ چلتی رہی. اب اس کے بعد 11 امام تشریف لے آئے، 11ویں امام تک کسی کی بھی حکومت ہم نہیں دیکھتے. تو حکومت اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت نہیں ہے. دیکھیے خداوند عالم کی طرف سے جو ہمارا امامت کا تصور ہے، یہ بات پہلے شاید ہو چکی ہے، اس کے مطابق جو امام ہیں وہی پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہی اسپرچوئل لیڈر ہیں. تو اصل میں تو اس امت کے لیے جو خدا کی طرف سے ایک نظام مقرر کیا گیا، نظام، یہ لفظ نظام آپ کو مولا علی کے کلمات میں بھی مل جائے گا، اور یہ لفظ نظام آپ کو جناب سیدہ کے خطبے میں بھی ملے گا، خطبہ حدت میں، کہ ہماری جو ولایت ہے وہ اس امت کے لیے ایک نظام ہے. تو یہ نظام کے طور پر خدا نے متعارف کروایا. اب یہ امت کی بدبختی ہے کہ اس نے اس نظام کو چھوڑ کے، جو الہی نظام تھا، اس کو چھوڑ کے ایک دوسرا نظام اختیار کر لیا، اور ظالم جابر فاسق فاجر آتے چلے گئے. بنو امیہ کے حکمران ایک سے بڑھ کے ایک آتے چلے گئے، 132 ہجری تک وہ مسلط رہے. پھر بنو عباس والے آ گئے، وہ 600 سال مسلط رہے. پھر ترکی آ گئے، ترک والے آ گئے. اس طرح عالم اسلام پر وہ لوگ مسلط رہے کہ جن کو اصل میں خدا نے یہ کام نہیں دیا تھا. تو ظاہر ہے اس امت کے اندر خرابی آنی ہے، پھر اس امت کے ساتھ یہی ہونا ہے. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر دور میں ایک حکومت کی ضرورت ہے. اب اگر حکومت کی ضرورت ہے تو زمانہ غیبت میں بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو زمانہ غیبت میں ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ حکومت سے انکار کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انارکی کے حامی ہیں. پھر تو سوسائٹی کے اندر لا لیسنس ہوگی، انارکی ہوگی. اور اگر کچھ لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ حکومت تو بس امام زمانہ آ کے قائم کریں گے، یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امام زمانہ آ کے حکومت قائم کریں گے، لیکن جب تک امام زمانہ نہیں آتے ہم کیا کریں؟ ہم اس سارے نظام کو چھوڑ دیں اور ظالم جابر فاسق فاجر لوگ آتے رہیں، مسلط ہوتے رہیں، اس پورے نظام سے کھیلتے رہیں، اور ہم بیٹھ کے صرف دعا کرتے رہیں، اللہم اجل ولی الفرج. 1150 سال ہو گئے، فرض کریں 1000 سال اور بھی ہو جائیں، تو جو مومن ہیں اس کا کام یہی ہے کہ وہ بس امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا رہے، اور معاشرے کا نظام جو ہے فاسق فاجر لوگوں کے ہاتھ میں. تو یہ بہتر ہے، اسلام کی روح اس چیز کے اندر ہے. دیکھیے اسلام جو آیا ہے ایک نظام زندگی کے طور پر آیا ہے نا، وہ نظام زندگی جس کو پیغمبر اکرم نے مدینے میں نافذ کر کے بتایا، اور اس کے بعد 25 سال تک دوسرے لوگ آ گئے، پھر 4.5 سال تک علی علیہ السلام کا زمانہ رہا، پھر 6 مہینے تک امام حسن کا زمانہ رہا، اور اس کے بعد آج تک مختلف فاسق فاجر لوگ آتے رہے. تو کیا اسلام کا جو ایک نظام ہے، نظام زندگی، وہ بس 10 سال پیغمبر کے اور 5 سال امیر المومنین اور امام حسن کے، 15 سال کے لیے اسلام آیا، اسلام بطور نظام زندگی کے، اسلام ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف کے طور پر 15 سال کے لیے آیا، اور اس کے بعد اب باقی 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، اب ظالم جابر فاسق فاجر کو کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہیں کھیلیں، اسلامی مقدسات اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور مومن جو ہے بس امام زمانے کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا رہے. یہ بات اسلام کی روح سے کسی طرح میچ نہیں کرتی، لہذا حکومت کی ضرورت ہر دور میں ہے، اور اگر ہے تو इस्लाम में हुकूमत की शराइत क्या है, इस्लामी हाकिम की शराइत क्या है। इस्लामी निज़ाम के अंदर जो एक हुक्मरान होता है उसकी शराइत क्या होती है? अगर आप उसको देखें, जिसको मैं कोशिश करता हूँ आपको अभी दिखाने की, कि इस्लाम में जो हाकिम होता है, अगर आप कुरान से पूछें कि उसके अंदर क्या शराइत होनी चाहिए, तो आपको अंदाजा होगा कि सबसे पहली शर्त जो है वो है ईमान। ईमान, दूसरी शर्त जो है वो है इल्म, तीसरी शर्त जो है वो है अदालत, और चौथी शर्त जो है वह है हुस्न तदबीर। ये मैं आपको अभी ये लिखिए आगे इंशाल्लाह। कि इस्लाम में क़यादत और रहबरी की शराइत क्या है, कि इस्लाम में क़यादत और रहबरी की जो शर्त है उसमें पहली चीज जो है वह इल्म और शुजात। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इसको छुट्टा मिल गया जी। जो पहली शर्त है इस्लाम में वह है इल्म और शुजात। कि किसी जाहिल को कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा इस्लाम में, और कुरान करीम ने इसके बारे में साफ साफ कह दिया है कि कुल हल मिन शुरकाएकुम मन यहदी इलल हक। पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है जो हक का रास्ता दिखाए। कुल अल्लाह यहदी लिल हक, कह दो कि खुदा ही हक का रास्ता दिखाता है। अफमन यहदी इलल हक पे अहक को अयुत्तबा, भला वो जो हक का रास्ता दिखाए वो इस काबिल है कि इसकी पैरवी की जाए। अमन ला यहदी इल्ला अयुदा, या वो कि जब तक कोई उसको रास्ता ना दिखाए वो रास्ता ना पाए। फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, कैसा इंसाफ करते हो तुम, कैसे फैसले करते हो तुम। यानी आप ये कहिए कि वो शख्स के जो खुद इस काबिल है कि जो दूसरों का हक का रास्ता दिखा रहा है तो उसका इत्तबा करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, या उसको फॉलो करना चाहिए कि जो खुद इस काबिल ही नहीं है कि हक का रास्ता दिखाए, जिसको किसी और को हक का रास्ता दिखाना पड़ता है कि ये सही रास्ता है इसको चलो। बल्कि वो इतराफ भी करता है, लाउला अली ला हलाका उमर, मसलन अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो कुरान करीम कहता है कि वो ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए जो तुम्हें हक का रास्ता दिखाता है, या वो ज्यादा ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए जिसको रास्ता खुद दिखाना पड़ता है। ये तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 35। सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में जनाब तालूत का वाकया, और तालूत जो थे वो अल्लाह के नबी नहीं थे, लेकिन जब बनी इसराइल ने दुआ की और अपने नबी से कहा कि हम हमारे लिए एक लीडर भेज दें, तो खुदा ने तालूत को भेजा। तो लोगों ने कहा कि तालूत को क्यों बना दिया, इसके पास तो माल ही नहीं, आमतौर पर यही अप्रोच होती है लोगों की कि जिसके पास माल हो उसी के पास लीडरशिप होनी चाहिए। तो कुरान करीम ने कहा कि वकाल लहुम नबीयुहुम इन अल्लाह कद बअथ लकुम तालूता मलिका। तो उनके नबी ने कहा कि भाई खुदा ने तालुत को बनाया है। ठीक है, पहली बात तो यह कि खुदा ने बना दिया काफी। कालू अन्ना यकून लहुल मुल्क, यकून लहुल मुल्क मुल्क अलैना। तो लोगों ने कहा कि भाई उसको कैसे बादशाह मिल सकती है, उसको कैसे बालादस्ती मिल सकती है हम पर। वन अहको बिल मुल्क के मिन हो, हम ज्यादा हकदार हैं उनसे। क्यों? वलम युता सअता मिनल माल, उसके पास तो माल भी नहीं है इतनी ज्यादा। तो उसके पास चूंकि माल नहीं है, लिहाजा माल वाले को हक है कि वो लीडर बने। कला इन अल्लाह सफाहु अलैकुम, तो वो जो उनके नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम थे या कोई और, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उनको तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया है, मुंतखब किया है, अल्लाह ने किया है, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके आगे वो एक वजह भी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने जो मुकर्रर किया है क्यों मुकर्रर किया है। तालूत कोई नबी तो नहीं है, कोई रसूल तो नहीं है, कोई मासूम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुंतखब इसलिए किया कि वज़ादहू बस्तन फिल इल्म वल जिस्म, क्योंकि अल्लाह ने उनके उनको इल्म और जिस्म में बरकरी अता की। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क अता करता है, वो वसी इल्म रखने वाला है। तो जो अहम बात है वो ये इसमें कि वज़ादहू बस्तन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने उनको इल्म और जिस्म में बरतरी दी। अच्छा, इल्म में बरतरी तो साबित हो गई, ऊपर भी आयत आ चुकी है इल्म के हवाले से ही, ऊपर हिदायत वाली आयत का तालुक भी इल्म से। लेकिन इल्म के साथ साथ यहां कहा गया है जिस्म। तो जिस्म से क्या मुराद, जिस्म से मुराद एक तो यही जिस्म है ढील ढोल, ये भी अहम था पहले जमाने में ढील ढोल, क्योंकि मुकाबला जो होता था वो तलवारों से और घोड़ों से और इन चीजों से होता था। तो उसमें जाहिर है कि जो इंसान की जिस्मानी ताकत और सलाहियत है वो भी काउंट होती थी। लेकिन असल बात जो है वो ये कि लफ्ज जिस्म जो है वो कनाया है, इशारा है दरअसल शुजाअत की तरफ। वरना बाज़ औक़ात लंबे चौड़े जिस्म वाले लोग मैदान से फरार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और माला अली के जिनका कद निस्बतन थोड़ा सा कम था कहते हैं, वो साबिर कद्दे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर सिर्फ जिस्म ही सब कुछ होता, यानी जिस्म से मुराद ये फिजीक है, तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लोग जो है बिजली का मुजाहरा नहीं करते। लेकिन असल चीज जो है वो ये है कि इंसान का जिस्म जितना भी बड़ा हो उसके अंदर एक शुजाअत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, जुरअत होनी चाहिए। तो इल्म और शुजाअत आज देख लें, आपके मकतब तशय्यो के पास ऐसी कायदा से रहबरियत है कि जो जालिम जाबिर फासिक फाजिर के सामने डट के खड़ी हुई, जो इस्तेमार और ताबूत की आंखों में आंखें डाल के बात करती है। कुछ और लोग भी लेकर आए इधर, कुछ और सिस्टम भी आए, हमारे सामने की बातें हैं। अफगानिस्तान में अमीर उल मोमिनीन आ गए, इराक में खलीफतुल मुस्लिमीन आ गए, कभी लोगों ने उसामा बिन लादन को हीरो बना दिया, कभी सद्दाम को हीरो बना दिया। तो ये जो मुख्तलिफ लोगों के तजुर्बात अभी हमारे सामने 20-25 सालों में हुए, उसमें आपने देखा कि इन लोगों ने शुजाअत का मुजाहरा नहीं किया, बुजदिली का मुजाहरा किया, गधे पे बैठ के भाग गए अफगानिस्तान के पहाड़ पे। अभी ये जो दाइश का खलीफा मारा गया, मारा गया तो शुजाअत के साथ लड़ता हुआ बहादुरी के साथ मारा जाता। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के किसी उसमें रह रहा था छुपे छुपे, और अमरीकियों ने आके मार दिया। भाई मैदान में निकल के मारा जाता, जमकर तबा मारा जाता। सद्दाम इराक से भाग रहा था, किसी नाले में पाइप के अंदर, पता नहीं नाले के अंदर छुपा हुआ था, 9 महीने का छुपा रहा उसके अंदर। फिर उसको ढूंढ के निकाला अमरीकी फौजियों ने, इराकी फौजियों ने, नाले में से निकाला उसको। एक जेर जमीन एक नाला नुमा कोई बना हुआ थी जगह, वो छुपा हुआ था, भागा हुआ था वो। कहाँ वो तलवार लड़ाया करता था वीडियो में, फौजी भी था वो साथ। तो एक फौजी के अंदर शुजात होनी चाहिए ना, जब सब कुछ खत्म हो गया, इराक तबाह हो गया, अब तुम्हें, अभी तुम्हें जिंदगी का शौक, अभी तुम्हें जिंदा रहने के शौक है, मर जाओ इज्जत आबरू के साथ, ताकि तुम्हारा नाम बाकी रहे कम से कम तारीख में, कि हाँ भाई सद्दाम मर्दाना वार मुकाबला करते हुए अमरीकी गोलियों का शिकार हो गया। तो ये सब लोग जो हैं, कर्नल गद्दाफी मालिकियों से भागते हुए रास्ते में मारे गए। तो ये तो हाल है उनके शिजात का। इसके मुकाबले में आप देखें मकतब तशैय के पास, अलहमदिल्ला रहबर मौजम को देख लें, आप हसन नसरुल्ला को देख लें, आप इराक के हमारे उलमा को देख लें, मराजीन को देख लें, शहीद कासिम सुलेमानी को देख लें, जो फ्रंट पे आके लड़ने वाले, अपनी जानें कुर्बान करने वाले, अपनी औलाद कुर्बान करने वाले। तो ये है ना एक खूबी, शुजात, इल्म और शुजात। ना जाहिल के हाथ में इस्लामी माशरे का निज़ाम दिया जाएगा, ना बुजिल के हाथ में इस्लामी माशरे का निज़ाम दिया जाएगा, शुजा के हाथ में दिया जाएगा। ये इस्लाम की शराइत है, ये कुरान की आयतें हैं। ये तीसरी शर्त जो है वो तकवा और परहेजगारी है, उसको हम अदालत कहते हैं। और इस हवाले से भी कुरान करीम की जो सूरह बकरा की मशहूर आयत है, फ़ाइज़िबतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात फ़तम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुक लिन्नास इमामा क़ाला वमिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाए गए, फिर उनकी इमामत के मनसब पर फ़ाइज़ किया गया, उन्होंने कहा मेरी औलाद में, खुदा ने कहा तुम्हारी औलाद में तो दे दूंगा इसको। ये इस तरह कुरान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल तो हुई ना, क्योंकि बाकी आइंदा आने वाले अंबिया जो हैं और अहमत आहरीन जो हैं, वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, लेकिन एक शर्त के साथ, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये मेरा ओहदा, अहदी अहदी अहदी, ये मेरा ओहदा है कि किसी ज़ालिम तक नहीं जाएगा। ठीक, ज़ालिम दो तरह का होता है, एक ज़ालिम वो होता है जो किसी और पर जुल्म करता है, और एक जालिम वो होता है जो किसी और पर जुल्म नहीं करता बल्कि अपने नफ्स पर जुल्म करता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना कि अब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। अब ज़ाहिर है आदम अलैहिस्सलाम ने किसी और पर जुल्म किया नहीं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। तो हर गुनाह जो है वो एक जुल्म है, या किसी और पर है, किसी और पर नहीं है कम अज़ कम अपने नफ्स के ऊपर एक जुल्म है। तो मकसद ये है कि किसी गुनाहगार को यह हक नहीं है कि वो इमामत के मनसब पे फायदा। ठीक है, अलबत्ता ये बात ध्यान में रहे कि इमाम है मासूम एक इस तरह है, और इमाम है आदिल एक दूसरी इस तरह है। इमाम है आदिल, ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं, जरूरत पड़ी तो मैं पेश कर दूंगा आइंदा, कि इमाम है आदिल, इस्लामी रियासत के सरबराह को इमाम आदिल कहा गया। अगर मासूम के हाथ में हो तो इमाम मासूम है वो, लेकिन इमाम मासूम के हाथ में इस्लामी रियासत की सरबराही नहीं है तो उसको आदिल होना चाहिए। इमाम आदिल के लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसलिए इमाम कहते हैं। बाद लोग कहते हैं इमाम क्यों कहते हैं, इमाम बन गए इमाम क्यों कहते हैं, रिवायतों में इमाम कहा गया, इस्लामी रियासत के सरबराह को इमाम कहा गया, इमाम भी कहा गया, खलीफा भी कहा गया है, अमीर भी कहा गया है, इमाम में लीडर है वो। हाँ मासूम नहीं है, तो मासूम अलग है इमाम मासूम, लेकिन इमाम आदिल की इस्तलाह भी उनकी रिवायत के अंदर शियों में भी आई है, सुन्नियों में भी आई है, ये इमाम की इस्तलाह सुन्नियों में भी आई है। उनके यहाँ भी ऐसी किताबें लिखी गई हैं जिसमें इमाम कहा गया, और वो उन्हीं हदीसों से है जो उनके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी। तो इमामत के लिए जरूरी है कि वो जालिम ना हो। जालिम ना हो तो क्या हो, आदिल हो। मासूम अगर अवेलेबल हो तो मासूम हो, कोई हर्ज नहीं, कोई गैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मासूम की मौजूदगी में कोई और उस वजह पे फायद कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर मासूम मौजूद नहीं है, गैबत नहीं है, तो इमाम आदिल उसकी जगह लेगा और वो वही काम करेगा माशरे में, कवानीन का नफाज, हुदूदुल्लाह का क्याम और वो सारे उमूर माशरे के इज्तिमाई उमूर को अपने हाथ में लेगा। तो ये तकवा और अदालत, ये जो है वो बुनियादी शराइत में से है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है रोक देते हैं। मैं चाह रहा था आज हम बहस को किसी नतीजे तक पहुंचा के ख़त्म कर देते, लेकिन लग नहीं रहा है कि आज ये बहस ख़त्म होगी। तो कोई हर्ज नहीं है, एक लेक्चर और भी हो जाए, क्योंकि बीच में गैप भी आ गया था, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ा पीछे से। अगले हफ्ते फिर हम कोशिश करेंगे ये बहस जो है वो किसी नतीजे तक पहुँच कर अख्ताम पजीर हो जाए। तो मेरे ख्याल में मुनासिब है कि अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दें।
कि किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पांचवा जो सवाल है, क्या गैर मासूम की हुकूमत की इताअत वाजिब है, इसके बारे में आपने राय दे दी है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है।
नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई बात कही है, तो वो मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। देखें, तो इस्लाम में जब बात की जाती है इताअत की, सेवा करने की, तो दो तरह की इताअत होती है, एक है कंडीशनल, एक है अनकंडीशनल। तो कभी भी किसी गैर मासूम की इताअत जो है वो अनकंडीशनल नहीं हो सकती, कंडीशनल होगी। ठीक है, क्योंकि वो मासूम नहीं है, उससे खता का इम्कान, गलती का इम्कान। लिहाजा हुक्म ये है कि जब वो मारूफ का हुक्म दे तो उसकी अताअत करो, लेकिन अगर वो मुनकर का हुक्म दे तो उसकी अताअत न करो। मारूफ में अताअत करो। मिसाल के तौर पर जैसे वालदैन के लिए कहा गया, वैसे तो कुरान करीम में वालदैन के लिए लफ्ज अताअत इस्तेमाल नहीं हुआ है। वालदैन के लिए कहा गया वबिल वालिदैन एहसान, वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। लेकिन लफ्ज अताअत कहने में कोई हर्ज नहीं, रिवायत के अंदर लफ्ज अताअत भी आया है। तो वालदैन की अताअत, या बीवी को कहा गया कि शौहर की अताअत करो, या तालिबे इल्म को कहा गया कि उस्ताद की अताअत करो, या आवाम को कहा गया हुक्मरान के साथ करें, ये सारी जो अताते हैं, ओबीडियंस है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब ये है कि अगर वो मारूफ में हुक्म दें, अच्छे काम करने का हुक्म दें, तो उसको मानो, अगर वो गलत काम करने का हुक्म दें तो उनको ना मानो। और इस सिलसिले में अली अलैहिस्सलाम से ये कॉल, अगर ये बहस कहीं आई होगी तो मैंने ये कॉल जरूर दोहराया होगा, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लेक्चर चल रहे होते हैं तो बाकी चीज़ें ध्यान में नहीं होती कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमा दिया है कि ला ताअतिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, के खालिक की नाफरमानी करते हुए किसी मखलूक की अताअत नहीं है। तो मखलूक की अताअत उस वक्त होगी जबकि उसमें खालिक की नाफरमानी ना हो। मासूम के जहां तक ताल्लुक है तो मासूम अगर किसी चीज का हुक्म दे तो उसमें तुम्हें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो मारूफ है या मुनकर, क्योंकि वो मुनकर का हुक्म दे नहीं सकते, वो जो कुछ भी हुक्म देंगे वो मारूफ ही का होगा। इसलिए अगर वो हुक्म दे आग में कूद जाओ तो कूद जाओ, अगर मासूम कहे ना आग में कूद जाओ, तो आप कहे ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का गालिबन, तो उन्होंने कहा आग में कूद जाओ, कूद जाए वो। लेकिन कोई और अगर कह दे आग में कूद जाओ, पैगम्बर अकरम ने एक लश्कर बनाया, उसका एक सिपा सालार बनाया, तो जो सिपा सालार होता था लश्कर का वो उलुल अम्र होता था, उलुल अम्र की अतात वाजिब है। अच्छा वो लश्कर गया, ये वाक़ बुखारी में किसी जगह गालिब, वो लश्कर गया और एक शहरा में पहुंचा, तो जो उलुल अम्र साहब थे उन्होंने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग जाओ जाके लकड़ियाँ लेकर आओ, जमा करो। अच्छा लोगों ने सोचा कि उनका ऑर्डर है, उनको मानना चाहिए, शायद खाना पकाएंगे, देगे बेगे चढ़ाएंगे, बिरयानी बनाएंगे। वो गए, उन्होंने जाके लकड़ियाँ जमा कर ली और थोड़ी देर में लकड़ियों का एक ढेर तैयार हो गया। जब लकड़ियों का ढेर तैयार हो गया तो उन्होंने कहा कि साहब आग जला दो, जला दो लकड़ियाँ। लोगों ने मच्छर दिखा दी, वो लकड़ियाँ जलने लगी। अब जब लकड़ियाँ जलने लगी, शोले बुलंद होने लगे, तो उल अमर साहब ने कहा कि शाबाश अब वन बाई वन इसमें डाइव लगा दो। अच्छा वो भी साहब आए कराम से, वो खुद सितारे थे, उन्होंने कहा कि आग पे शरम लगा दें, क्यों लगा दें? कहा मैं तुम्हारा उल अमर हूँ ना, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, छलांग लगाओ। पैगम्बर ने कहा था ना मेरी बात मानना है, बात करना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप हमारे उलुल अम्र हैं, आपकी अतात वाजिब है, पैगम्बर ने भी यही हमें हुक्म दिया है, लेकिन ये कि आप जंग के लिए हमारे उलुल अम्र हैं ना, मैदान जंग में आप जब जाएंगे, जिस मकाम पे हमें खड़े करेंगे हम वहाँ खड़े हो जाएंगे, जब कहेंगे आगे बढ़ो आगे बढ़ेंगे, तलवार चलाएंगे, दुश्मन की सफर में घुस जाएंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, इन सारी बातों में तो हम आपकी अतात करेंगे, लेकिन यह है कि अपने हाथों से खुद ही लकड़ियां जमा करें और आग लगाएं और उसमें कूद जाए, ये हम आपका तो नहीं कर सकते हम। उन्होंने कहा फिर हम मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा पैगम्बर से। कहा ठीक है कर दीजिए आप शिकायत, शिकायत तो हम भी आपकी करेंगे। और फिर यही हुआ, लश्कर जब वापस आया तो लश्कर ने अपने अमीर की और अमीर ने अपने लश्कर की शिकायत की, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम लोगों ने ठीक किया, अगर आग में छलांग नहीं लगाई अच्छा किया, क्योंकि अगर तुम आग में छलांग लगा देते तो कयामत तक उसी आग में जलते रहते। तो यहां पर देखें, क्योंकि ये मासूम नहीं है, गैर मासूम है, और वो उलुल अम्र है अपनी इस तरह में, यानी पैगम्बर ने बनाया है उनको कि एक खास मकसद के लिए उलुल अम्र, उलुल अम्र यानी साहिब अम्र, जो ऑर्डर देने वाला, तो जो फौजी कमांडर होगा वो कमांड करने वाला होता है ना, ऑर्डर देने वाला होता है, वो तो वो ऑर्डर तो दे सकता है लेकिन वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए देगा और उसकी अतात भी उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा, लिहाजा उसके कहने पर आग में छलांग नहीं लगा सकते, ये इलॉजिकल है। हाँ अगर मासूम कहे आग में छलांग लगा दो फिर लगा दो, ठीक है, तो गैर मासूम की अतात है लेकिन मारूफ में है, मुनकर में नहीं।
कुछ सवालात आए हुए, लेकिन ये जो पहला जो आपने जवाब दिया इसमें थोड़ा सा एक कमी रह गई कि अगर रहबर जो है वो हुक्म देते हैं जिहाद का तो क्या उसमें अपना रिसर्च करना ज़रूरी है और उसको ये साबित करना ज़रूरी है अपनी अकल में कि ये सही कह रहे हैं और गलत कह रहे हैं?
नहीं, अगर अगर रहबर हैं, अगर वो लीडर हैं, इस्लामी रियासत के सरबरा हैं या उम्मत के कायद और रहबर और हैं, तो अगर वो जिहाद का हुक्म दें तो जिहाद करना वाजिब हो जाएगा, जिहाद एक ऐसा मामला है कि जिसमें हर इंडिविजुअल को रिसर्च नहीं करनी, बल्कि जो लीडरशिप को फॉलो करना है। ये मारूफ है ना, मुनकर तो नहीं है, किसी मुनकर का हुक्म नहीं, किसी हराम को काम करने का हुक्म नहीं, फिर तहकीक करनी पड़ेगी आपको। तो एक इस्लामी रियासत का सरबरा अगर कहता है, और वो सरबरा भी आलिम है, फकीह है, जो इस्लाम में शराइत हैं उनको फुलफिल करने वाला है, और वो कह रहा है कि ये जिहाद का वक्त है, उठ खड़े हो, तलवार उठाओ, मुकाबले पे निकल आओ, तो निकलना वाजिब होगा। वहाँ अपनी अकलमंदी नहीं दिखानी, ड्राइवर तो एक हुकूमत के सरबरा भी हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी ने इराक में हुक्म दिया लोगों को कि निकलो और दाइश का मुकाबला करो, लोग निकले, उन्होंने मुकाबला किया। एक फकीह आदिल अगर हाकिम शरह की हैसियत से ऐलान कर दे जिहाद का, तो भी निकलना वाजिब होगा, हुकूमत उसके पास ना भी हो तो।
अगर ये सवाल आए
सवाल ये जो लिखा हुआ है कि मेरा सवाल ये है कि विलायत फकीह कैसे बना सकते हैं, कैसे विलायत फकीह को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे पहले इमाम खुमैनी थे और आज इमाम खामेनेई हैं, इमाम खुमैनी से पहले कौन वली फकीह थे, मुझे ज़्यादा नीयत नहीं है, इस बारे में अगर आप इस पर थोड़ी वजाहत फरमाएं तो हम आप पर मशकूर होंगे। मेरे बहुत सारे अहले सुन्नत फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करते रहते हैं, अभी मुझे खुद भी पता नहीं है। तो देखिए, ये जो सीरीज शुरू हुई है इसी पर्पस के लिए शुरू हुई है कि इसको आम फहम जुबान में बताया जाए, हर एक को दावत दी गई है कि वो इसमें शिरकत करें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो कुछ बातें हम कर चुके हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह आइंदा आगे आ जाएंगी वो। ठीक है, इमाम खुमैनी से पहले ये बात मैंने आज के लेक्चर में बयान की है कि इमाम खुमैनी से पहले जो है वो फकहा ने अपना एक पॉलिटिकल रोल तो ज़रूर प्ले किया है, लेकिन हुकूमत कभी कायम नहीं। ठीक है, तो लेकिन एक पॉलिटिकल रोल प्ले किया है, प्लस ये है कि किताबों में ये बहसें रही हैं कि फकीह के पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं। अब कैसे बनाया जाता है, तो इमाम खुमैनी को तो किसी मेथड से नहीं बनाया गया, बल्कि एक इनकलाब को उन्होंने बर्पा किया, और उस इनकलाब के बाद जो है वो उस इनकलाब के बनने से पहले ही वो लीडर थे, क्योंकि पहले ही उनको इमाम खुमैनी कहा जाता था। तो जब वो इनकलाब आया तो वो पूरा माशरा जो है उन्हीं के कंट्रोल में गया। उसके बाद ये बहस हम पहले किसी लेक्चर में कर चुके हैं कि वली फकीह को बनाया नहीं जाता, बल्कि उसकी शनाख्त की जाती है कि इस वक्त जो इस्लामी रियासत है, उन रियासत को जो मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने की सलाहियत किस फकीह के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसकी शनाख्त की जाती है। ये शनाख्त वो लोग करते हैं जो फुकहा के अंदर क्वालिटीज की शनाख्त की सलाहियत रखते हैं, जिनको अहले खुबरा कहा जाता है। ईरान में उसकी एक बॉडी बना दी गई है, बॉडी होना ज़रूरी नहीं है शरीयत के मुताबिक, लेकिन चूंकि एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के अंदर एक बॉडी बना दी गई है मजलिस खुबरगान के नाम से, और वहाँ पर उलमा हैं, खुद मुश्तहिदीन हैं, और इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स भी हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत टेक्निकल ज़माना है, बहुत एडवांस ज़माना है, रियासत को चलाना एक पेचीदा निज़ाम है, और जो मामलात हैं दुनिया भर से वो भी आपके सामने है, कितना टेक्निकल और कितना पेचीदा है। लिहाजा एक फकीह का इल्म अपनी जगह, लेकिन उसको बहुत सारे और मामलात में टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा उस फोरम के अंदर, उस बॉडी के अंदर मजलिस खबरगान के अंदर मुश्तहिदीन हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाद टेक्नोक्रेट्स भी रखे गए हैं। तो वो देखते हैं जब ऐसी नौबत किसी वक्त अगर खुदा ना खास्ता आई, तो तो वो ये देखेंगे कि इस वक्त जो अवेलेबल फुकहा हैं उनमें सबसे काबिल कौन है जो इस निज़ाम जमहूरी इस्लामी को चला सकता है, और इस निज़ाम जमहूरी इस्लामी को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है, तो उसकी खिदमत में पेश करेंगे। वो उम्मीदवार ही बनेगा, उसके इलेक्शन नहीं होगा। उससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि प्लीज़ आप ये चार्ज लीजिए, आप संभालिए और आप इस निज़ाम को चलाइए। जो इस्लाम का निज़ाम है वो इस तरह है, उसमें उसमें लीडर खुद चल के नहीं आता। ये बात असल में लोगों को पता नहीं है इतना। जो लोग सवाल करते हैं ना कि अली अलैहिस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई अपने हक के लिए, भाई इस्लाम के निज़ाम में नहीं है ऐसा तलवार उठाना अपने हक के लिए। ये वो हक नहीं है जिसके लिए तलवार उठाई जाए। 1,24,000 अंबिया में से किसी ने तलवार उठाई है कि मुझे नबी मानो, मुझे रसूल मानो, माशरे की क़यादत मेरे हवाले कर दो? इसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। ये तो उम्मत को चाहिए खुद चल कर आए। इमाम की हैसियत खाने काबा की तरह हो, मसलुल इमाम का मिसले काबा। पैगंबर ने फरमाया इमाम की मिसाल काबे की थी। काबा चल के नहीं आता, तुम्हें चल के काबे के पास जाना पड़ता है। इस निज़ाम के अंदर इमाम जो है वो उम्मत के पास कुछ चल के नहीं आता। उम्मत को चाहिए था कि पैगंबर के बाद अली अलैहिस्सलाम के पास चल के जाती, उम्मत नहीं गई। तो आज ये निज़ाम इसी तरह है कि लोग चल के जाएंगे, वो देखेंगे कि इस वक्त कौन है साहिब विलायत, कौन है ऐसा जो इस पूरे निज़ाम को चला सकता है। ये पूरे मस्जिद खबरगान चल के जाएगी उनके पास, प्लीज़ आप ये एक्सेप्ट कीजिए। वो मना करेंगे, वो इनकार करेंगे। आयतुल्लाह खमेनी ने मना किया जब इमाम खमेनी के बाद उनको ऑफर की गई, उन्होंने कहा नहीं, मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, उनके हवाले करें आप। वो मना करेंगे, वो जोड़ रोड़ नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। फिर उनके हवाले किया जाएगा कि नहीं, आप ही इस काम के लिए सबसे मुनासिब हैं, आप आगे बढ़ेंगे और उनके हवाले किया जाएगा। तो ये निज़ाम जो इस तरह है जिसमें साहिब विलायत की शनाख्त की जाती है कि असल में इस काम के लिए सबसे मुनासिब आदमी कौन है, तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें उम्मत पे चल के जाना पड़ता है। बहुत खूबसूरत बात किसी ने की, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि हम इंतजार कर रहे हैं कि इमाम जमाना आएंगे आएंगे आएंगे। भाई इमाम जमाना नहीं आएंगे, आपको चल के जाना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम तैयार हैं, हम आमादा हैं। और जब आपकी तैयारी और आमादगी को खुदावंद आलम देखेगा तो खुदा उनको कहेगा आप जाहिर हो जाइए, आपके जाने साथ तैयार है। ये ना कहो कि वो आएंगे, बल्कि अपने आप को तैयार करो और अपने आप को उनकी खिदमत में पेश करो। ये निज़ाम कुछ इस तरह है। आतुल हसन ज़्यादा अमली का कहना है कि जैसे गैबत तदरीजी थी इसी तरह जहूर भी तदरीजी होगा, जैसे ईरान में इस्लामी इनकलाब और फिर दूसरे कंट्री में और फिर तीसरे और फिर बात विलायत हकी से के पेश नज़र है। हाँ देखिए, बाद उलमा ने यह सलाह इस्तेमाल की है और वो उसको जहूर सुगरा और जहूर कुबरा कहती हैं। इस तरह इमाम ज़माना के एक जहूर कुबरा है, एक गैबत कुबरा और गैबत सुगरा है। इस तरह इमाम ज़माना का एक गैबत जहूर सुगरा और एक जहूर कुबरा है। अच्छा, ऐसी कोई सलाह किसी रिवायत के अंदर आई नहीं है, इसलिए बाद लोग इस तरह को इस्तेमाल करने से मना भी करते हैं। लेकिन जो लोग ये सलाह इस्तेमाल करते हैं उनका तस्वुर यह है कि इमाम ज़माना जब तशरीफ़ लाएंगे उससे पहले, यानी इमाम को जो ज़हूर होगा उससे पहले एक ज़माना ऐसा आएगा जब इमाम की आमद का बड़ा चर्चा होगा और उसकी तैयारी होगी और इमाम के अनसार आवान जो है दुनिया भर में एक्टिव होंगे, तैयार होंगे, गुफ्तगू हो रही होगी। मिसाल के तौर पर आज से अगर 50 साल पहले देखें तो इमाम ज़माने के हवाले से बातें बहुत कम होती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस पर बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही हैं। तो ये जो दौर है इसको कहते हैं कि ये ज़हूर सुग़रा का दौर है और इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा इमाम के नस्बत के लिए काम करेंगे। जहाँ एक तरफ ज़ालिम जाबिर फासिक फाजिर क़ुव्वतें उरूज पर होंगी जैसे कि हमारे ज़माने में है, इसी तरह इमाम के अनसार आवान भी अपनी तैयारी तेज़ कर देंगे और इनकलाब इस्लामी भी उसकी एक कड़ी है। दुनिया भर की जो तहरीकें चल रही हैं तो ये सब उसी की तहरीक कड़ी है। आज अगर इमाम तशरीफ़ ले आती हैं और खाने काबा से ऐलान करती हैं, 313 अफराद पहुँचेंगे सबसे पहले, 313 अफराद क्या पूरी दुनिया में इनकलाब लेकर आएंगे? नहीं, पूरी दुनिया में इनकलाब नहीं रह सकते 313 अफराद। पूरी दुनिया में इनकलाब लाने के लिए बहुत लोगों की जरूरत होगी, लेकिन 313 वो होंगे जो सबसे पहले इमाम की खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन इनकी इनकी फॉलोइंग होगी। और चलें आज इमाम का जरूरत होता है तो 313 में से एक सैयद हसन नसरुल्लाह होंगे इंशाल्लाह। अब सैयद हसन नसरुल्लाह अगर इमाम जमाने की खिदमत में पहुंच जाती हैं तो वो एक नहीं है, दुनिया जानती है हसन नसरुल्लाह एक नहीं है, उनके पीछे 20,000 का लश्कर है। तो इसी तरह 313 अगर पहुंच जाए तो दुनिया में इनकलाब आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। एक यमनी होंगे, सैयद यमनी, सैयद नहीं है लेकिन यमनी है, यमनी का क्याम। अब इस जमाने में अगर आज इमाम का दौर होता है, हम देखते हैं यमन के अंदर मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं, 41 मुल्कों की फौज का मुकाबला कर रहे हैं, 6 साल हो गए उनको, कोई शिकस्त नहीं दे सका, उनके हौसले पस्त नहीं कर सका, बल्कि उन्होंने तो टफ टाइम दे दिया। तो आप देखें आज अगर इमाम का दौर होता है तो यमनी, यमनियों का एक लीडर इमाम की खिदमत में हाजिर होता है। तो यमनी का मतलब एक लीडर नहीं है, एक पूरा ग्रोह है, बहुत बड़ा लश्कर है। और आज अगर इमाम का दौर होता है तो सैयद खुरासानी इमाम की खिदमत में हाजिर होंगे। सैयद खुरासानी कौन है आज? आज के दौर में अगर आप बात करें, पेशनगोई करने से मना किया गया इमाम की जरूरत थी, इसलिए हम पेशनगोई नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं। आज अगर इमाम का जहूर होता है तो सैयद खुरासानी कौन है? यमानी को हम देख रहे हैं, खुरासानी नजर नहीं आ रहा है, तो सैयद खुरासानी कौन है? दरबार मौजूद है वो। अगर इमाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं तो एक पूरी रियासत इमाम की बारगाह में हाजिर हो जाती है। तो ये जो निजाम विलायत है ये इसी तरह है, और जो लोग इससे मुतमस्सिक होंगे वो खुद ब खुद इमाम की फौज में शामिल हो जाएंगे। अगर हसन नसरुल्लाह शामिल हो जाएंगे तो पूरी हिज़्बुल्लाह शामिल हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अपने आप को इस निज़ाम विलायत से मुतमस्सिक रखो, वरना इंडिविजुअल शनाख्त करने की कोशिश करेंगे हम कि इमाम यही है या नहीं है, और बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो नहीं इमाम नहीं, हमने जो अपने जहन में डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ होगा अगर उसके मुताबिक इमाम नहीं हुए तो हम इनकार कर देंगे। यहूदी इंतजार कर रहे थे पैगम्बर अकरम का, फलस्तीन से चल के आए थे वो मदीना, इस सरजमीन में वो आएंगे खजूरों वाली सरजमीन में, जब पैगम्बर तशरीफ लाए यहूदियों ने इनकार कर दिया। तो क्या हमारे अंदर इतनी मार्फत है कि हम खुद इमाम की शनाख्त कर सकेंगे? हम तो मुश्तहिद जामे शराइत की शनाख्त नहीं कर पा रहे, हम तो मुश्तहिद आलम की शनाख्त नहीं कर पा रहे। तो अगर हम उस निज़ाम विलायत से वाबस्ता होंगे तो खुद बखुद इमाम के सिपाही का हिस्सा बन जाएंगे। ये दौर जो है इसको ज़हूर सुग़रा का नाम दिया है बाज़ उलमा ने, और जो जो इबारत आपने स्क्रीन पर दिखाई थी उसका मफहूम भी शायद यही है।
जी अगर किसी का सवाल है तो वो माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकता है।
अच्छा देखिए एक सवाल फ्लैश हुआ है, हम हुकूमत इस्लामी नहीं बना सकते अपने अपने मुल्क में तो क्या हम ये मेरी तस्वीर भी आ रही बीच में, हम ये वाजिबुल आयन अमल नहीं अंजाम दे रहे, क्या ईरान से बाहर लोग जो अपने इस फराइज को अंजाम देना चाहते हैं उनका क्या फरीजा है? अच्छा देखिए हुकूमत इस्लामी कायम करना ये वाजिब आयनी नहीं है, वाजिब कफाई है। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक पूरी सोसाइटी से है वो वाजिब कफाई है। अगर सब लोग अंजाम ना दें, कोई भी इस तरफ मुतवज्जो ना हो तो सब गुनहगार होंगे, अगर कुछ लोग ये काम कर लें तो बाकी लोग जाहिर है वो फिर साकित हों उनके ऊपर। तो ये लेकिन ये इतनी सिंपल सी बात नहीं है, वाजिब किफायत जैसे नमाज जनाजा है गुस्ल कफन है, अगर कोई भी अंजाम न रहे सब गुनहगार होंगे। एक इस्लामी रियासत वजूद में लाना यानी अल्लाह का निज़ाम माशरे में कायम करना, अल्लाह के कवानीन का नफाज करना, ये तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजने का अल्टीमेट पर्पज है। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात वअनज़लना मअहु अलकिताबा वलमीज़ान लियक़ूमा अन्नासु बिलक़िस्त, कि हमने रसूलों को निशानियों के साथ भेजा और उसके साथ किताब और मीज़ान को उतारा, मीज़ान या निज़ाम अदल को उतारा, लियक़ूमा अन्नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग इस निज़ाम अदल के लिए उठ खड़े हों। ये तो अम्बिया की आमद का अल्टीमेट पर्पज़ है। ये काम अगर नहीं होगा माशरे के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। इसमें सिर्फ मामूली सी बात नहीं है कि गुनहगार होंगे, गुनहगार तो हम पता नहीं और किस किस तरीके से होते रहते हैं, लेकिन आपका पूरा निज़ाम जो है ये किताबती निज़ाम के तौर पे चलेगा। अब ठीक है, हम अकेले नहीं कर सकते या फला माहौल ऐसा है, जो कुछ भी है वो जस्टिफिकेशन हमको हम अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, लेकिन अगर ये काम शुरू ही नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। या अगर हम थ्योरेटिकली इससे एग्री नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली कब करेंगे? तो एक इस्लामी निज़ाम अगर ना हो माशरे के अंदर तो क्या क्या खराबियाँ आती हैं? अभी देखें हर साल कई ईदें होती हैं हमारे यहाँ, और लोग कहते हैं फला इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ये सही हो नहीं सकता। एक हदीस भी चल रही है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने शेयर की, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो एक हाथी से गैबी की निदा आई कि ए उम्मते जालिम, तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, अब तुम ना कभी ईद उल फितर कर सकोगे ना कभी ईद उल अज़हा कर सकोगे। अब तो सोशल मीडिया पर तर्जुमा कुछ मुख्तलिफ चल रहा है, सही इबारत कुछ इस तरह की है, कई रिवायतें उसका खुलासा ये। अच्छा, इसमें एक मफहूम ये निकाला गया, देखो कई चांद निकल रहे हैं, ये कई चांद निकलते रहेंगे, हर जगह निकलते हैं। कुछ लोगों ने कहा इसको साइंसदानों के हवाले कर दें, मसला हल हो जाएगा। अच्छा चले, पाकिस्तान में मालियों के हवाले हैं, यूरोप में तो साइंसदानों के हवाले पास है ना, तो वहाँ तीन तीन नींदें क्यों होती हैं? अमेरिका में कौन सा मुनीबुर रहमान बैठे हुए हैं, तीन तीन नींदें वहाँ पर हो रही है ना, वहाँ क्यों होती हैं? तो बात यह है कि ये इस उम्मत की बदबख्ती है कि जब वो इस्लामी निज़ाम कायम नहीं करेगी तो उसके साथ यही होना है। अगर एक इस्लामी निज़ाम कायम हो, हाकिम शरह का ऐलान हो, कल ईद है, ईद हो जाएगी, जो किसी और मुस्तैद का मुखलद है उसका भी वाजिब है कि ईद करे। अतुल्ला सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे, उन्हें ज़्यादातर मुस्तैदीन का फतवा यही है, अगर हाकिम शरह की तरफ से ऐलान हो जाए कि कल ईद है या कल रोज़ा है तो उस पर अमल करना वाजिब है। लेकिन अगर हाकिम शरह कोई ना हो, अगर इस्लामी निज़ाम ही ना माशरे में हो, तो यही होगा, हर आदमी अपनी ईद का ऐलान करेगा, फिर रात के 2 बजे तक लोग फोन करते रहेंगे, अभी चांद साबित हुआ या नहीं हुआ। मुझे फोन करके पूछे चांद हुआ, मैंने कभी मैंने कोई टेलीस्कोप लगाया हुआ अपनी छत पे, मुझे क्या पता चांद हुआ या नहीं हुआ। आप भी टीवी पे देख रहे हैं, हम भी टीवी पे देख रहे हैं, अगर यकीन आ जाता है तो कर लेंगे, नहीं आता ना कर लें, ना करें क्या करें। बाद में हमारी उलमा ने कहा कि हाँ भाई हो गया, साबित हो गया, चलिए हो गया तो हो गया, खत्म हो गई बात, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, यकीन करें ये उस वक्त तक ऐसे ही रहेगा जब तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। अब इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो जाहिर है कि जो हमारे हिस्से का काम है वो हमें करना चाहिए, और ये वही काम है। सबसे पहला काम तो देखें, किसी भी सिस्टम को सही करने में सबसे पहला काम जो है वो है अवेयरनेस, शऊर, आगही। यही ना हो तो फिर बाकी काम कैसे होंगे भला?
जी, माइक ओपन है, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो पूछ सकता है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
سر، میں گلید بلتستان سے بات کر رہا ہوں. ابھی یہ جو موجودہ صورت حال ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، تو تقریباً سننے میں آیا کہ 11 دن کے بعد ابھی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. اس حوالے سے فتح کس کی ہوئی؟ آیا اسرائیل کی کوئی، ان کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہوا، یا ابھی صرف فلسطین کے بہت زیادہ شہید ہوئے؟
دیکھیں، فتح اور شکست کا تعلق جو ہے وہ نقصان سے نہیں ہوتا، نہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کن کے لوگ زیادہ مرے. تو فتح اور نقصان کا تعلق جو ہے وہ کاؤز سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کاؤز میں کامیاب ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظاہراً یزید کو کامیابی ہوئی، اصل میں امام حسین کامیاب ہوئے. نہیں، ظاہراً بھی یزید کو کامیابی نہیں ہوئی. کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کس چیز ہدف کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا، آپ اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ یزید کیا چاہتا تھا؟ امام حسین سے بیعت لینا. یزید کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا. امام حسین نے کیا کہا؟ مثلی لائی بھائی و مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. تو امام حسین کامیاب ہوئے نا، یزید کہاں کامیاب ہوا؟ اب امام حسین قتل کر دیے گئے. صحیح ہے، قتل کر دیے گئے. یزید یہی کر سکتا تھا بہت زیادہ کہ وہ قتل کر دے، اس نے قتل کر دیا. لیکن اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا نا، ناکامی اس چیز کو کہتے ہیں. تو ہر دور میں یہی چیز دیکھی جائے گی. اسرائیل ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا. اسرائیل کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بھلا 1967 میں چار چار روزہ جنگ کے اندر اس نے چار ملکوں کو تباہ کر دیا، ان کی پوری ایئرفورس تباہ کر دی. سیریا، جارڈن، ایجپٹ، لیبنن، چار ملکوں کو اس نے کھنڈر بنا دیا ایئرپورٹس کو، مقابلہ نہیں کر سکے وہ. تو 4 روزہ یا 6 روزہ جنگ کے اندر فیصلہ ہو گیا. اور حزب اللہ کے 33 روزہ جنگ کے اندر اسرائیل ان کی جو کیپیبلٹی تھی میزائل فائر کرنے والی، اس کو ختم نہیں کر سکا. 2014 میں جب حماس سے مقابلہ ہوا تو اس وقت بھی اسرائیل کا خیال تھا کہ حماس کے اندر جو کوالٹی کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ یہ میزائل فائر کرتے ہیں اسرائیل کے اندر، ان کو ختم کر دیا جائے، نہیں کر سکا وہ. آخری وقت تک حماس والے راکٹ فائر کرتے رہے. اور آج 2021 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 11 روزہ جنگ کے بعد کل رات 1 بجے اسرائیل نے اپنا آخری گولی فائر کیا. 2 بجے سیز فائر کا ٹائم تھا، لیکن حماس نے رات 2 بجے تک راکٹ فائر کیا اسرائیل کی طرف. 2 بجے کے بعد اس نے بدل دیا. تو آپ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیں گے، ان کی اور صلاحیت سامنے آئی. پہلے تو وہ قریب قریب مار رہے تھے، اب تو انہوں نے حیفا اور تل ابیب تک تو خیر سے نقصان پہنچایا. اور وہ جو ان کا ایک آئرن ڈوم کہلاتا ہے، جو میزائل ڈیفنس سسٹم، وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت سے میزائل انٹرسپٹ کیے اس نے، لیکن فرض کریں 90% بھی اس نے روک لیا. گو کے کہے 90% نہیں روک سکا، لیکن فرض کریں 90% بھی اس نے روک لیا. اور 4,000 میزائل فائر کیے حماس نے، تو 10% تو گرا نا. تو 4,000 کا 10% جو ہے 400 بنتے ہیں، 400 میزائل جا کے گرے. اب وہ تو کہہ رہے ہمارے 10 آدمی مارے گئے، 20 آدمی مارے گئے، لیکن 400 میزائل گرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو وہ تو بکھلا گیا، وہ تو پریشان ہو گیا. خیر ہے، اسی نے کہا جنگ بندی کراؤ، حماس نے تو نہیں کہا جنگ بندی کرو. حماس سے اگریمنٹ کیا ہی نہیں جنگ بندی کا. یہ تو ایجپٹ میں یو اے ای نے، سعودی عرب نے، ان لوگوں نے پیچھے سے پریشر ڈال کے اور اسرائیل کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کرا کے حماس کو کہا آپ اس کی پابندی کریں گے. پھر وہ جگہ جہاں سے یہ فساد شروع ہوا تھا، شیخ جراح جس کو کہتے ہیں، وہ جو بیت المقدس کے آس پاس کی آبادی ہے، اصل تو فساد وہاں سے شروع ہوا تھا کہ اسرائیل نے وہاں کے لوگوں کو بے دخل کر دیا تھا. ان کو کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، ان کو مار کے نکال رہے تھے وہاں سے. اور ابھی جو اگریمنٹ طے پایا ہے اس کے مطابق اسرائیل ان کو نہیں نکالے گا. जिस बुनियाद के ऊपर आपने ये लड़ाई शुरू की उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया ना आपने, इसीलिए जो फलस्तीनी है वो जश्न मना रहे हैं, उनको मनाना चाहिए। लेकिन ये कि ये लड़ाई, ये जंग खत्म नहीं हुई है, फिर कभी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये ना देखें कि किसके लोग ज़्यादा मरे, देखें कि क्या वो अहदाफ जो इसराइल हासिल करना चाह रहा था वो हासिल कर सका, ज़ाहिर वो नहीं हासिल कर सका।
जी माइक को ओपन है, सवाल करना चाह रहे हैं तो सवाल कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह। एक सवाल था चांद से मुतालिक, वो ये कि क्या डायमेंशन होती है कि एक इलाके में चांद देखा गया तो उसकी इफेक्टिवनेस कहाँ तक रहती है? एग्जाम्पल, ये अभी लिमिटेड टू एक कंट्री वाइज होती है या शहर के हिसाब से भी हो सकती है कि किसी शहर में देख लिया गया तो शहर वाले रोज़ा कर लें, या मुल्क के हिसाब से, या अगर हम ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखें जब इमाम आएंगे तो उस वक्त पूरी दुनिया में टाइम पे होगी या उस वक्त भी लोकेलिटी के हिसाब से होगी?
देखें, ये मसला जो है ना वो इतना सीधा नहीं है असल में। अगर बहुत सीधा मसला होता तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर ले दे क्यों हो रही होती। असल में एक तो चीज़ ये है कि चाँद आसमान पे नज़र आ जाए, बात ही ख़त्म हो गई। ना हुकूमत के ऐलान की ज़रूरत है, ना मुज्तहिद के ऐलान की ज़रूरत है, ना हाकिम शरा के ऐलान की ज़रूरत है, ना इसमें कोई दो राय होगी। आसमान पे चाँद नज़र आ गया, ख़त्म हो गई बात। मामला वहां पर शुरू होता है जहां आसमान पे चांद नजर ना आए और टीवी पे नजर आए। तो अगर आसमान पे चांद नजर नहीं आया है तो कहां नजर आया? नहीं, हमारे शहर में नजर नहीं आया तो क्या किसी और शहर में नजर आया? तो अगर किसी और शहर में नजर आया तो क्या हमारे लिए वो काफी है? हम भी ईद कर सकते हैं या हम भी रमजान कर सकते हैं। तो इस हवाले से चूंकि अब ये बहस जो है वो इल्मी हो गई। अब जब बहस इल्मी होती है तो उसके अंदर एक से ज्यादा राय आ जाती है। इल्मी बहस आ गई ना, इल्मी बहस में फिर मुख्तलिफ राय आएगी सामने। किसी की इंटरप्रिटेशन कुछ होगी, किसी की इंटरप्रिटेशन कुछ होगी। मसलन एक चीज जिसके ऊपर अक्सर उलमा का इत्तेफाक है कि भाई एक जगह अगर चांद नजर आ जाए और दूसरी जगह नजर ना आए तो जो हम उफुक इलाके हैं उन सब में चांद साबित हो जाएगा। हम उफुक जिनका उफुक एक है। अच्छा, उफुक किसको कहते हैं? उफुक कहते हैं होराइजोन को। अब होराइजोन जो है वो तो हमारे साइंस के मुताबिक तो वो जगह है जहां जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते, मिलते हैं नहीं वैसे लेकिन नजर आते, उसको होराइजन कहते हैं। लेकिन फिक्र के किताब में जब आप जाते हैं तो वहां पर उफुक की डेफिनेशन मुख्तलिफ, मुख्तलिफ जो मराजईन एजाम है उन्होंने उफुक को मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह खुई का नजरिया यह था कि जहां जहां पर रात कॉमन है वहां पर ईद कॉमन होगी या चांद कॉमन होगा, ये उनकी डेफिनेशन थी। बात का नजरिया यह है कि अगर मगरिब में चांद साबित हो जाए तो मशरक भी हो जाएगा, क्योंकि मगरिब में अगर नजर आया है तो मशरक ही से चलकर गया होगा, जाहिर है तो मशरक वालों को कर लेना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनाई का नजरिया यह है कि साइंसी एतबार से जहां जहां चांद नजर आने का इम्कान यकसा था उनमें से किसी एक जगह पे अगर चांद नजर आ जाए तो बाकी इलाकों के लिए काफी होगा। वो अगर इम्कान यकसा हो, अगर इम्कान यकसा ना हो तो फिर काफी नहीं होगा। तो ये देखें, इस तरह मुख्तलिफ जो मराजी ने एग्जाम है उनकी आरा मुख्तलिफ। अच्छा, अभी एक और मसला लोगों के सामने आया ये बातें सब किताबों पे लिखी हुई है पहले से, लेकिन लोगों के सामने वाकफात पहली मरतबा आती है कि जिस चीज को आप कहते हैं रुईयत, नजर आना, हदीस के अल्फाज तो ही है ना कि चांद देख को रुईयत होनी चाहिए। तो जिस चीज को कहते हैं रुईयत, तो क्या वो नेकेड आई से होना जरूरी है या टेलीस्कोप से नजर आ जाए तो भी काफी है? क्या टेलीस्कोप को सिर्फ चांद को सिर्फ लोकेट कर सकते हैं या उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं? आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा यह है कि नेकेड आई से नजर आना जरूरी है, तो फिर उसको रुईयत कहेंगे, वरना रुईयत नहीं है वो। आयतुल्ला खामेनेई कहते हैं कि अगर टेलीस्कोप से भी नजर आ जाए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं, आम टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से दिन के वक्त नजर आ जाएगा, आम टेलीस्कोप, तो अगर टेलीस्कोप से भी नजर आ जाए चांद तो भी काफी है। अब इस वक्त जो चांद हुआ ईरान और इराक में, तो वो कहते हैं टेलीस्कोप से नजर आया, नेकेड आई से नजर नहीं आया। आयतुल्लाह खामेनेई के मुताबिक तो ईद हो गई, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के मुखालिफिन को कहा कि नहीं, आप ईद नहीं करेंगे क्योंकि ये टेलीस्कोप से नजर आया, नेकेड आई से नजर नहीं आया। तो कई तरह के मसाइल इसके अंदर हैं, कई तरह की पेचीदगी है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें अख्तिलाफात नजर आते हैं और इस जवाब से कई तरह से कई कई दिन लोग जो हैं वो ईद मनाते हैं।
उनका एक सवाल ये भी था कि इमाम जमाना के दौर में कैसे होगा, ये पूरी दुनिया में एक ही ईद होगी?
देखिए, चांद जो है वो आसमान पे जब नजर आता है तो दुनिया के एक हिस्से पे नजर आता है, दूसरे हिस्से पे उस पर नजर नहीं आता, ठीक है? तो ये तो डिपेंड करता है कि आया इमाम जमाना इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो आज जो इख्तलाफात है फुकहा के दरमियान, ज़ाहिर इमाम के ज़माने में तो इख्तलाफ नहीं होगा, वो उसमें तो एक डिसीजन होगा। तो अब इमाम जमाना अगर फर्ज करें कि इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि वो ये कह दें कि भाई कल ईद है, दैट्स ऑल, ईद हो जाएगी। लेकिन अगर वो भी आकर फर्ज करे लोगों से ये कहें कि तुम्हारे शहर में अगर आएगी आएगा तो ईद होगी, जैसे पैगम्बर अकरम के दौर में मक्के में अगर चांद नजर आता था तो मदीने वाले ईद तो नहीं करते थे, मदीने में नजर आता तो मक्के वाले तो ईद नहीं करते थे, उस जमाने में कम्युनिकेशन के सिस्टम ऐसा था ही नहीं, मक्के वाले को पता ही नहीं होता था मदीने में चांद हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी डिपेंड करेगा कि इमाम अलैहिस्सलाम की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, जो वो इरशाद फरमाएंगे वही दीन की सही तशरीह होगी। हम अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर हम यकीन से कह सकते हैं कि इमाम के जमाने में ये नहीं होगा कि एक शहर में दो ईद होगी, या शौहर ईद मना रहा है बीवी रोजे से, ये नहीं होगा।
आयतुल्ला खोई का भी फतवा था जो बहुत मशहूर है, कि उन्होंने ये बोला था कि दुनिया में जहां भी चांद दिख जाए तो वो पूरी दुनिया जो है वो ईद मना सकती है, इस तरह का फतवा है कोई?
नहीं, मैंने अर्ज किया ना, आयतुल्ला खोई का फतवा ये है कि रात को अमन होना चाहिए, जहां जहां रात को अमन होती है वहां के लिए वैलिड है वो, और जहां रात को अमन नहीं है, नहीं, दिन ही तेज हो जाता है तो वहां पर नहीं होगा, वहां पर अलग देखना पड़ेगा। एक वक्त आसमान में जब चांद नजर आ रहा है उस वक्त जहां जहां रात है तो वो सब सब कॉमन है।
तो इस हिसाब से तो फिर दो ईदें होंगी दुनिया में?
हाँ, दुनिया में दो ईद हो सकती है उस हिसाब से, यानी जो जाहिर है कि दो सेक्शंस बने हुए दुनिया के, हिस्टोरिकल है दुनिया, तो एक एक स्पेयर में ईद होगी, दूसरे स्पेयर में ईद होगी, इस तरह। سوال کوئی فلیش ہوا تھا فلسطین کے حوالے سے، وہ کیا تھا بتائیں؟
فلسطین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے صرف ایران اور لبنان ساتھ دیتے تھے، اس بار لگتا ہے اس میں کافی فرق آیا ہے، بہت ساری مسلم ممالک نے بھی ساتھ دیا، آپ کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟ یہ لاسٹ کوشچن، اس کے بعد پھر آپ کنکلوڈ کریں۔
میری نالج میں تو نہیں ہے کہ مسلم ممالک نے ساتھ دیا، مسلم ممالک جو ساتھ دیتے ہیں اخلاقی طور پر سیاسی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے، جس طرح ہم کشمیر کا ساتھ دیتے ہیں اخلاقی طور پر دے رہے ہیں، فارسی طور پر دے رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو مسلم ممالک یہ جو او آئی سی کا اجلاس میں جس طرح ساتھ دیتے ہیں یا جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کرتے ہیں، تو اسرائیل بھی جانتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور فلسطینی بھی جانتے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو مجھے نظر نہیں آیا کہ کسی نئے ملک نے فلسطین کا اس طرح ساتھ دیا ہو، وہی پہلے بھی جو ساتھ دینے والے تھے اب بھی وہی لوگ ہیں، پریکٹیکلی ساتھ دینے والے نظر نہیں آتے۔ ہاں عوامی سطح پر نعرے وارے جھٹکے ضرور کیے۔ وہ ایک سوال کسی کو پوچھنا ہے، دیکھیں کوئی چائنیز زبان میں لکھا ہوا آ رہا ہے۔
ہیلو، السلام علیکم آقا،
آخری سوال کر لیں۔ وعلیکم جی. السلام،
بہت بہت شکریہ آپ کا سیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے رمضان کے شب قدر سے ریلیٹڈ، کی فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ شب قدر کے دن کی رات کو ملائکہ اور روح زمین پر اترتے ہیں، فار ایگزامپل ایک جگہ ایک تاریخ میں سعودی عرب میں آج 23 شب قدر ہے، 23 رمضان ہے، تو آج وہاں پہ روحیں اور ملائکہ اتریں گے، اور کل چونکہ پاکستان میں ہے ایک دن بعد، تو کیا پوسیبل ہے کہ کل پاکستان میں ملائکہ اور روحیں اتریں گے، یا ایک ہی وقت میں؟ کیونکہ شب قدر ایک زمان سے ریلیٹڈ ہے، ایک زمانہ ہے، اس زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر روحیں اور ملائکے کو اتارنے ہیں، تو پھر ایسا پوسیبل ہے کہ کیونکہ مختلف کنٹریز میں 2 سے 3 دن تک کا گیپ بھی آ جاتا ہے شب قدر کا، اور کوریا میں تو ہر سال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ ایک دن بعد میں ان کا رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی ہوا کہ پہلے اہل سنت کی رمضان سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اہل تشیع کی رمضان سٹارٹ ہوتی ہے ایک دن بعد، اور عید بھی ایسے ہی ہوتی ہے، تو اس حساب سے تو ایک نے مستفید ہونا ہے اور دوسرے نے بس ایسے ہی برائے نام شب قدر منانے ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت بہت شکریہ۔
دیکھیں ملائکہ اور جو روح اترتے ہیں نا، اس کا ٹینشن آپ نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ جو ملائکہ اور روح اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر، ٹھیک ہے، وہ امر لے کر اترتے ہیں، ملائکہ اور روح جو ہیں وہ امر لے کر آتے ہیں، تو وہ جو امر لے کر آتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے، آپ کے پاس نہیں آتے، وہ صاحب الامر کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو خدا تقدیر لکھتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، وہ یہ سارے فیصلہ جات لے کے آتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنے برادران اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ملائکہ اور روح اترتے ہیں بتاؤ کہاں اترتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں آتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے پتھر کی دیوار پہ وہ امر لے کر کیوں آئیں گے؟ امر یعنی آرڈر، خدا کا آرڈر ہے، خدا کے ڈیسیجنز ہیں، وہ لے کر آ رہے ہیں، وہ تو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لے کر ڈال دیں گے۔ تو یہ تو ایک دلیل ہے کہ اگر ملائکہ اور روح امر لے کر آ رہے ہیں تو اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک صاحب الامر ہیں، ان کے پاس وہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بتائے شب قدر کیا ہے اور کب ہے اور کہاں ہے اور کب امر آئے گا، یہ ہمارا ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارا ٹینشن صرف یہ ہے کہ شب قدر میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اعمال کریں، دعائیں پڑھیں، زیارت امام حسین پڑھیں، اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ ہماری توبہ اگر جس دن ہو جائے گی وہ ہمارے لیے شب قدر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس شب قدر کے لیے رمضان بھی ضروری نہیں ہے، جب چاہے توبہ کر لیں، ہم جب چاہیں اپنی شب قدر خود کر لیں، لیکن شب قدر ایک بہانہ ہے کہ شب قدر میں انسان نیکیاں کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرے، ٹھیک ہے؟ باقی فرشتے جو آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہاں جانا ہے، और जिनके पास आ रहे हैं उनको बताया किस रात को आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा हेडेक नहीं है।
जी आगा कंक्लूड कर दें।
हाँ, इस्लाम करें, मेरे ख्याल में इस दुआ के साथ के बारे रहा हमें दी ने इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ आलम कुहर के मुकाबले में बरसर प्रकारों में कामयाबी अता फरमा, मुसलमानों के तमाम मुख्य जमाओं को तूल उम्र अता फरमा, इस ज़मीन पर दो इंसाफ से दूर करने के लिए अपने आखिरी हिज्जत के दूर में फाजिल फरमा, हम सब के मामले इस्लाम के अंसार आवाम में से करार दे। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ورحمتك يا أرحم الراحمين.